कम उपलब्धि होगी। कृष्ण प्रेम कितना दुर्लभ है इसके संत से पाया जा सकता है। सबको साधु संत की महिमा समझ में आएगी। हम लोग साधु संत की महिमा कुछ कुछ समझ रहे हैं कुछ कुछ, इसलिए साधु संत खोजते फिरते हैं। जब वो नहीं मिलता है साधारण लोगों में भी भक्ति का कुछ संचार कर अनुकूल बनाकर श्रोता के रूप में या जीव रूप में हम लोग कुछ हरी कथा करते। एक बार संत महाराज जी कह रहे थे प्रभुपाद के रूप, लोग कहते हैं कि हमने बहुत शिष्य बने, हमने एक भी शिष्य नहीं बने। मैं सच्चे हृदय से कहता हूं हम एक परिवेश बना रहे हैं, परिवेश मैंने क्या वातावरण बना रहे हैं जिसमें कुछ हरी कथा की आलोचना हो। हम चाहें तो वो लोग सुने, सुनने के वाले भी जगत में नहीं है, बहुत कम हैं, बिरले हैं। इसलिए कर रहा हूं मैं सेवक किसी को अपने शिष्य नहीं बनाता। मैं जानता हूं कि गुरु के योग्य नहीं, यही गुरु को समझना चाहिए। मध्यम अधिकारी वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि यथार्थ गुरु नारद जी हैं या उनके समकक्ष हैं रूप सनातन जी, ये गुरु हैं। यह जगत हमने गुरु को नहीं है किंतु वातावरण बनाने के लिए ऐसा किया है जिससे भक्ति की आलोचना हो सके, भक्ति की कथाएं सुन सकें। अन्य तो ये जो कथाएं हम कह रहे हैं ये कौन सुनेगा? संसार के लोग जो मानवी की वेल खाते हैं जिनका कुछ आचरण नहीं है, विचार नहीं है, सबको अवलंबन ही नहीं किया है, जिनको कुछ पता नहीं है भक्ति का, वो लोग सुनेंगे? वो लोग तो सुनेंगे। ये एक वातावरण है जिसमें कि हम लोग चेतक को करें, इसे जो कुछ भी करेंगे साधु शास्त्र के अनुवर्ती में करेंगे। जब आप गोबर संसार करते हैं, जब आप वृंदावन में बात करते हैं, आप 3 लाख हरिनाम करते हैं और साधु संग नहीं है तो वो 0 हो जाए या कुछ फल देगा, प्रेम फल नहीं देगा। और साधु संग में हम जा रहे हैं कुछ साधु संग में उनके संग में रहें तभी कुछ वहीं पर हो जाए, जरूर हो जाए। साधु संग जी कांसी पर्वत पर रहते थे, याद यहां पर कि 4 वृक्ष थे, वट, पीपल, पापड़ और आम का, जिसमें रात में सोते थे किसी वृक्ष के नीचे ही आता है।
बड़ी कथा करते बरगद से,
हाँ बरगद से नीचे हरी कथा होती और चिंतन करते थे। रसाल वृक्ष अर्थात आम वृक्ष का और पापड़ के अंदर में या फिर छाया में विश्राम करते थे और ध्यान इत्यादि काम करते थे और कथा कहते थे। कहाँ? सुमेरु पर्वत पर जाता जयराम की ऐसी सुंदर कथा हो रही है और शंकर जी कैलाश पर्वत पर श्रीमद भागवत का प्रवचन कर रहे हैं तो वो कैसा है? यही तो साधुओं के अंदर जहां भी रहे कृष्ण की कथाओं का रस, दिल्ली कथाओं का रस, साधु हो उनके अनुगत में भजन हो, साधु हो तब तक ठीक। और यदि साधु संग नहीं है, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सर्व सिद्धि मैंने प्रेम शक्ति सिद्धि हो जाएगी। और साधु संग नहीं है और ये सब साधन ये बुजुर्ग है। साधु कौन है? ये कृष्ण के तत्व को जानने वाला एकांतिपुर में कृष्ण भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। लाख कष्ट आने पर भी प्रहलाद महाराज की भांति अटल अचल हिमालय की तरह में बने रहे, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, उनका मत बदल नहीं सकता। प्राण चले जाए क्या है?
जाए
वैष्णव कुल की यह रीति है, वैष्णव कुल की रीति ये क्या है? प्राण जाए बल भक्ति न जाए। कृष्ण के घाट पर राधा कुंड के घाट पर पानी पिएंगे भाई, ज्ञान के और मुक्ति वाले घाट पर नहीं पिएंगे। किसी को पता ही नहीं है ये मुक्ति का घाट कौन है, प्रेम का घाट कौन है, राधा जी का घाट कौन है, निराकार ब्रह्म का कौन सा घाट है, ये पता ही नहीं। सब जगह को एक समान मान, ये समझना जरूरी है। मैं तो ये सब भागवत समझ में नहीं आएगा जो उसको बताया जा रहा है। तो गोपियां गोपियां कैसे कर रहे हैं, उनका दैनिक चर्चा इसमें दिया। शाम को सवेरे जब जाते हैं वन में और जब लौटते हैं, गोपियां किस प्रकार से त्रिशित नयनों से उन्हें निहारती हैं, कभी घर के अंदर कभी बाहर में आती हैं जाती हैं। और पश्यन्ति सस्मित मुखम, अपने मुस्कान भरी मुख से और नयनों से कृष्ण को निहारती हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ये दैनिक चर्चा है, कैसे घर का काम करती हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, घर का काम है क्या, सब को उनके पास में दुख आते हैं जगत के टकरा कर चले जाते हैं। भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में और साधन भक्ति में अंतर है। साधक भक्त को दुखाक्रांत कर लेते हैं, उसको ये अशांत कर देते हैं। भाव भक्त में दुख आते हैं किंतु दुख आते हैं उसको अभिभूत नहीं करते, और प्रेमा भक्ति वाले को दुख ही नहीं।
अभिज्ञा तो अलग
वो क्लेश से कोई संबंधित है, मध्यम अधिकारी उसका सामंजस्य कर लेगा और दुख को दुख नहीं कर सकता, दुख से उसको समान नहीं। और साधक साधक में भी तरह तरह की समस्याएं आ जाती, उनको ये कला मालूम नहीं है कि संसारी बातों को दुखों को कष्टों को कैसे हम सामंजस्य करते हैं। जब ये कला आने लगती है तो वो मध्यम अधिकार में प्रवेश करता है, नहीं तो वो परिचय अधिकार के। गोपियां गोपियां बीमार कहां करते चारों मूर्ति से युद्ध में चारों मूर्ति मारे गए, उनके जितने कंस के भाई थे वो सब लोग आए और मारो मारो पकड़ो पकड़ो सब करके शिष्य पर एक साथ में आक्रमण किया। और बलदेव जी ने वही हाथी का दांत और कृष्ण ने हाथी का दांत लेकर उनके समस्त भाइयों को और जितने पहलवान जो और जो आए थे चारों मूर्ति के बदले में अति क्या 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 अति बल प्रबल और यह सब को मार गिराया और बाकी जो है सब भरे। इसके बाद में कृष्ण ने कंस का यह सब लेकर के दो भाग पर सुनता सब संस्कार जैसा करना चाहिए संस्कार किया। अब विश्राम घाट में आकर उन्होंने स्नान किए सब लोगों के साथ में और वताश्रम पीला पर
दूर किया।
ये कौन महीने में हुआ था,
कार्तिक
महीने में थर्ड ठंड लगा था, इसलिए ऊंचे टीले पर चढ़ गए ये सूर्य वहां पर उनको साथ मिले और सम को गत किया अतर दूर किया और उसके बाद में उतर करके आए। महाराज उग्रसेन हाल में अभिषेक का समस्त सामग्री लेकर के आए। कोई भी राजा से मरने के बाद में कोई भी संप्रदाय किसी गुरु के प्रकट होने पर वो जगह खाली नहीं रहती, उसी दिन उसी क्षण में उसको पूरा करना होता है, 24 घंटे के या 8 घंटे के अंदर उसको पूरा करना होता है। बिना राजा का राज्य नहीं रहेगा और संप्रदाय भी बिना गुरु के नहीं रहेगी, इसलिए वैष्णव में आचार्य के गर्भ होने पर साथ ही साथ में उनका घर में समाधि या जल समाधि या कुछ किया और करने के बाद में आचार्य को एक उनके बदले में अभिषेक कर दिया। यदि पूर्ण रूप से अभिषेक नहीं हुआ भी तो काम चलाऊ प्रतिनिधि काम चलाऊ आचार्य या काम चलाऊ राजा या काम चलाऊ प्रधानमंत्री ये जरूर करना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो संप्रदाय भी भ्रष्ट हो जाएगा। इन्हें काफी साथ में करना। इसलिए कृष्ण ने देखा कि संत मारा गया मेरा बेटा, इसलिए सोने के थाल में चमर व्यंजन चमर इत्यादि लेकर के और अभिषेक की सारी सामग्री लेकर के मंत्रियों के साथ में ब्राह्मणों के साथ में कृष्ण के निकट पहुंचकर तो उसका अभिषेक करना चाहा। कृष्ण ने साथ ही साथ उनसे वो ले ली और लेकर के ब्राह्मणों के जय घोष में और मंत्रियों को से समझा करके और स्वयं राज तिलक अपने हाथों से उग्रसेन को कर दिया। नहीं आपके रहते वृद्धों के रहते हुए मैं कभी भी राजा नहीं। और दूसरी बात उनको अभिशाप था, अभिशाप नहीं बल्कि वरदान, लेकिन इनका कोई भी वंश में कोई राजा नहीं होगा क्योंकि कृष्ण इसलिए कृष्ण स्वयं उनके वंश में आए हैं उनकी भक्ति देख करके द्रवित होकर के। अरे जो समस्त विश्व ब्रह्मांड के ही यहाँ तक इस चीज जगत के भी समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, ये ब्रह्मांड की तो बात क्या, चीज जगत के ही मूल स्वामी हैं, सर्वकारण कारण है, उनको इस जगत का संस्कार राज्य लेना उनकी भी बात है। इसलिए उनको भी लागू कर दिया, इसे सभी काम निर्वाह हो गया। उन्होंने कहा बलदेव जी की बलदेव जी हैं और हम हैं, सारे विश्व के राजा लोग आपके चरणों में उद्धव पर बाहर लेकर के प्रणाम करेंगे, जो नहीं करा गए हम आक्रमण करके उनको हम पकड़ लाएंगे और आपके चरणों में झुका देंगे। आप निश्चिंत रूप से कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा करने के पश्चात घर में बड़े प्रसन्न से लौट गए। देव जी और वसुदेव जी हाथ जोड़कर के खड़े हो गए, वही चतुर गुरु वही स्वयं भगवान ये नारायण स्वरूप हैं, इनको इन्होंने हमको बर दिया था कि पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, हमारे समान का दूसरा कोई नहीं है। इसलिए यह स्मरण करके और हाथ जोड़ करके बहुत खुशी करना चाहिए। उसने देखा कि तुम्हारी लीला सब गड़बड़ हो जाए, जो माया को इशारा किया और इशारा करके और स्वयं देवी जी के गोदी में बैठ गए और उधर में बलदेव जी तरुण देव जी के चरणों में गिर गए। पिताजी और ये कहते भैया एक सेकंड के अंदर में योग माया के द्वारा मुक्त होकर के वो सब भूल गए और ये दोनों रोने लगे। ये बेटा तुमको मैंने बचपन से ही तुमको वहां पर दे दिया, गोकुल में तुम्हारी पुलिस के बाद प्रसन्न होकर के फिर राज्यसभा में आए। सुख है नंद बाबा बैठे हैं, अभी कहाँ बैठे हैं, बाहर है जहाँ पर की महाविद्या जी का स्थान है, मथुरा पैलेस घर में थी संस्कार कारागार जी धर उधरी सारी वही थी और यमुना जी वैसे बहती थी। नंद बाबा अपने छकड़े को लेकर के और सखाओं को लेकर के सीताम सुगर मंगल इत्यादि को लेकर के वहीं पर खड़े हुए, शाम हो गई, कृष्ण और बलदेव जी वहीं पर पहुंचे। देखा नंद बाबा बड़े दुखी आंखों में आंसू छल छला और कृष्ण को देखते ही आंसू देखने लगे। कृष्ण बलदेव जी लेकर के एक दाहिने गोदी में एक बाएं गोदी में बैठे, बलदेव जी दाहिनी गोदी में और कृष्ण जी बाएं गोदी में क्योंकि बलदेव जी बड़े हैं। कृष्ण जी रोने लगे, बलदेव जी भी रोने लगे, ये भी रोने लगे। बलदेव जी ने कहा बेटा आज याद आई, आज याद आई आज याद आई, तीन दिन हो गए मैं भूखा प्यासा यहाँ पर बैठा, हमारा मित्र वसुदेव हमारा भैया वसुदेव ये भूखे हैं। देवकी दिख गई, सारे लोग भूल गए और तुम दोनों भाई भी भूल गए। एक बार तो मैं हमें देखने के लिए नहीं आया, नंद जी ने पानी पिया कि नहीं, बाबा ने पानी पिया कि नहीं, अब तुम घर में रह गए, क्या तुम लोगों की तुम लोगों का विचार क्या है, विचार तो तुम्हारे प्रयोग प्रौढ़ हैं, किंतु बदलाव तुम लोगों की इच्छा क्या है? मेरे साथ में चलेगा या यही रहेगा? कृष्ण ने कहा, पिताजी यहाँ के जितने सारे लोग हैं, देवी वसुदेव जी और सारे लोग, तो हमको कहते हैं कि तुम हमारा पुत्र है। हम मथुरा के उद्धव और प्रभु और महाराज उग्रसेन और यहाँ की सारी प्रजाएं और गर्गाचार्य इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, वो कहते हैं तुम बस देवी के लड़के हो, देवती के लड़के हो। मेरा मन ऐसा स्वीकार नहीं करता, किंतु ये सभी कहते हैं, और इसलिए जबरदस्ती रोक रखा, हमें आने नहीं दिया, इसलिए आने में देरी हो गई। इतना सुनते ही नंद बाबा और जोर से रोने लगते। सहदेव जी ने कहा, देखिए पिताजी, मैं बस देव जी को अपना पिता नहीं मानता, हमारे पिता आप ही हैं। बचपन से जब से हमने देखा, आप ही को देखा। यदि गर्गाचार्य ऐसा कहते हैं, मथुरा वाले कहते हैं, वसुदेव और देवकी के भी यदि कहते हैं कि तुम हमारा पुत्र हो, मैं इसे मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकता? पिता बहुत तरह के होते हैं, जन्मदाता पिता, शिक्षा पालन पोषण करने वाला, शिक्षा देने वाला, राजा, ये सभी पिता, स्त्री का पति, स्त्री का पिता, प्राणों की रक्षा करने वाला यही पिता है। और जिसने अपनी लड़की की शादी जो करता है वो भी पिता के पुत्र है। इसलिए आपने हमारा पालन पोषण किया, यदि इनका पुत्र भी लोग आते हैं तो उन्होंने तो त्याग कर दिया हमारा बचपन से ही। जो खुद ही असमर्थ है, जो हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, प्राण नहीं कर सकता है, तो वो पिता क्या कर सकता है? इसलिए आप ही ने हमारा पालन पोषण कर दिया है। मैं आपको छोड़ करके मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नंद बाबा ने कहा, देखो बेटा ऐसा मत करो, कृष्ण को तो मेरे साथ में लेकर के जाता हूँ, हमारा बेटा है, तुम उनके बेटे हो, किंतु तुमको किंतु तुम यहाँ कुछ दिन रहो, आज यदि नहीं रहेगा तो ये तो मारे जाएंगे, क्योंकि उनके छह बेटे मारे गए हैं, कंस ने मारा, और तुम उनके सातवां पुत्र हो, सातवां ने तुम ही उनके पुत्र हो, कोई पुत्र उनका बचा नहीं, यदि तुम यहां नहीं रहेगा तो तुम तो मारे जाएंगे, इसलिए बेटा तुम ही कर रहे हो, कृष्ण के साथ के लिए तुमको बचा। श्रीकृष्ण ने कृष्ण के यहाँ तुम आ जाना, नहीं जाना हमसे नहीं जाना। मैंने पिताजी ऐसा आदेश आप मत करो, कृष्ण को छोड़कर के मैं एक सेकंड भी बच नहीं सकता, नहीं रह सकता, इसलिए ऐसा आदेश। नंद बाबा ने कृष्ण की तरफ में देखा, क्या करना चाहिए? उनको तो याद है ना, इंद्र पूजा के समय में अच्छी सलाह दी थी ना, ये इंद्र का पूजा किस लिए करते हैं? गिरिराज जी का पूजन कीजिए। उन्होंने इसी बात सुना, और जब जब कोई बात हुई सब इनको बुला लिया, ये कौन क्या करता है?
इंद्र पूजा की बात याद है, जब जब कुछ या बात होती है फिर तो बुला लेते हैं नंद बाबा,
उनसे पूछते हैं, परामर्श करते हैं। बिना कृष्ण से परामर्श किए हुए छोटा सा बच्चा होने पर भी 10-12 रुपया खुद कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है कृष्ण से परामर्श अच्छा हुआ, क्योंकि गोवर्धन को भ्रमण करते हुए देखा, काली भग में टूटते हुए देखा, और सबसे बड़ी बात देखी ये कृष्ण जबकि नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए, तो कृष्ण वहां पर पहुंचे और देखा वरुण जी उपहार लेकर के कृष्ण की परिक्रमा करके इसका स्तुति कर रहे हैं, और उनके नाते हमारी भी पूजा करने लगे। कृष्ण का इतना प्रभाव, हमारे बेटे का प्रभाव बुद्धिमान जरूर है। एक दिन उन्होंने देखा काली हरद के किनारे, जिस दिन काली का दमन किया, रात में वहीं पास में अभी जिसका नाम है दवानर कुंड, वहीं पर सब ब्रजवासी लोग सो गए। इसलिए कहीं ये डर था घर में जाइए वहां पर आग न लगा दे या कुछ न कर दे, इसलिए डर के मारे चुपचाप किसी से कहे बिना उसी जंगल में रह गए और कंस ने उसमें आग लगा दी चारों तरफ। कृष्ण ने सबके सामने देखते देखते उस आग को ऐसे काम कर दिया। साधारण बालक नहीं है, क्योंकि नारायण का इसमें कभी कभी आवेश होता है। ये भगवान नहीं है, किंतु इसमें न जाने क्यों नारायण का आवेश है, इसलिए अलौकिक कार्यों को करता है। इसलिए इसका परामर्श लेना कृष्ण की तरफ में देना कृष्ण ने कहा, पिताजी एक बात मैं बताऊं? बताओ बेटा। यदि मैं कहता हूं ऐसा किया जाए तो इसमें क्या हानि या लाभ है, इसको विचार किया जाए। बल्दे मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी बिना बल्दे जी के मैं नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। अतः यह संभव नहीं है कि मैं आपके साथ चलूं और बल्दे यहां पर रहे। यदि हम दोनों भाई जाते हैं तो जैसे भी हो संशय जी का आपके भैया या मित्र हैं, बस्ती जी को कोई लड़का इत्यादि नहीं, इसलिए ये तुम्हारे जाएंगे। तो आप तो इतने मनस्वी और उपकारी हैं बिना किसी लाभ के हानि के आप सबका कल्याण करूंगा। इसे यदि आप आदेश दे दें तो मैं दो चार दिन यहां और खा लिया हूं, बसवेश्वर जी का भी मन लग जाएगा और साथ साथ में यहाँ के लोगों को भी सांत्वना मिल जाएगी और दो चार दिन के बाद में हम परसों लौट आए, इसमें क्या बुराई। उनका सर एकदम हृदय धड़कने लग गया, किंतु कृष्ण ने कुछ योग माया का अवलंबन दिया। कृष्ण ने मौन रहे वो नंद जी, कृष्ण ने अवसर दे करके सोने के आभूषण और रेशमी वस्त्र इत्यादि ये सब चीजों को लेकर के कहा ये मेरी मैया को दे देना और मैं दो चार दिन चार करके मैं आ रहा हूं। नंद बाया का तो चित्त सन्न रह गया हृदय। उन्होंने कहा मैं अपने लड़के को बेच करके जाऊंगा, ये आभूषण जो दे रहा है और कपड़े इत्यादि दे रहा है मैया इसकी लेगी, ये बच्चे को तू बेच करके चला, तुमको उसके प्रति तरह की भी मोह ममता नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ये कैसे संभव होगा कि मैं ये इसको दे। किंतु कृष्ण ने कहा इसे बाध्यों को तो उनकी बात को भी मानना नहीं है। उन्होंने उनके गोदी में रख दिए कपड़े अलंकार सारे और कृष्ण चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इसके बाद में कहा कि पिताजी जल्दी से जाना है घर, नहीं तो वहां पर भी ब्रज उजड़ जाएगा, मेरी गैया सारी मर जाएंगी, बछड़े दूध नहीं पिएंगे, मैया भी मर जाएगी, इसे आपका जाना जरूरी है। अधिक दिन नहीं कल परसों में मैं जरूर आ जाऊंगा, पिताजी से भी उन्होंने पति किया। इसके बाद में बल्ले किए नंद बाबा रात में गाड़ी जोड़ी और जोड़ करके सखाओं को साथ लेते जिनको लेकर के आए थे, रोते रोते ब्रज में गोकुल में वो किया। बैठे गाड़ी में, गाड़ी चलती, बैल तो अपना घर पहचानते हैं, बड़े आराम के साथ में खेदी के साथ में अपने घर में चले। इधर में ये विचार करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी सीता में, इस जगत में प्रेम ही सर्वोच्च भाव, यह प्रेम ही कृष्ण को गोपियों को सखाओं को सारे जगत को ना चाहता है। प्रेम के अभाव में ही हम बद हुए हैं, प्रेम होने पर ही मुक्त हो सकते हैं, कृष्ण की सेवा को पा सकते हैं। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम के भी तात्पर्य होता है, थोड़ा प्रेम, अधिक प्रेम, अधिक और भी अधिक प्रेम, और भी अधिक प्रेम, सर्वोच्च प्रेम। जगत में जितने प्रकार के प्रेम हैं उनको साधारण रूप से पांच भागों में विभक्त कर दिया गया है। शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य, पांच विभाग कर सारे प्रेमों को विचार कर, जिसमें ऐश्वर्य की अत्यंत अधिकता है। यहाँ पर भी भगवान की सेवा करने की कोई जरूरत ही नहीं समझते, उनको सर्वव्यापी अनंत भोग प्यास से रही, जन्म मरण से रही प्रभु की सेवा नहीं होती। इससे श्रेष्ठ दास्य प्रेम है, इस तरह से पुत्रोत्तर श्रेष्ठ प्रेम है। साधारण मनुष्य का ये एक भाव होता है, मनोभाव, जहाँ पर जिसको अधिक प्रेम मिलता है वहीं रहता है, जहाँ पर कम प्यार मिलता है वहां नहीं रहता। यदि पति के साथ पति प्रेम नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसको कष्ट देता है, तो जहाँ उसको प्रेम मिलता है वहीं पर चला जाता है। इसलिए पतियों को भी छोड़कर के लोग चले जाते हैं। माता पिता के पास में प्रेम नहीं मिलता तो वो चाहे जैसी स्थिति में भी रह करके, दुख में भी स्थिति में रह करके पिता माता को भी छोड़ करके रहता है, जहां पर उनको कुछ न कुछ प्यार मिलता है। अब ये विचार करना है, कृष्ण को ब्रज में भी प्रेम है, प्रेम मिलता है, मथुरा में भी प्रेम है, उनको द्वारका में भी प्रेम है, मथुरा में उनको अधिक प्रेम मिलता है न ब्रज में अधिक प्रेम मिलता है। वहां पर गोपियां हैं जो कृष्ण को प्रेम करती हैं, और यहां पर मथुरा द्वारका को एक ले लो तो रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि 16108 रानियों का प्रेम, उनके पुत्रों का प्रेम, असुर और उद्धव का प्रेम, जदुवंशियों का प्रेम उनको मिलता है। किंतु सब शास्त्रों में ऐसा कहा है और देखा भी जाता है, ब्रज प्रेम ही उससे श्रेष्ठ है, मंत्र का जबकि ब्रज का प्रेम इतना उन्नत है जो मथुरा द्वारका में नहीं मिल सकता, तो वो मथुरा वृंदावन को छोड़ करके, ब्रज के छोड़ करके प्रेम मथुरा में क्यों आए, मथुरा में कैसे रह सकते हैं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मथुरा के कोटि कोटि गुण उन्नत और श्रेष्ठ ब्रज का प्रेम है। वहां का सिटी से लेकर गायें, बछड़े, मोर, तोते, वृक्ष, लता, ब्रजवासी सभी कृष्ण को अत्यंत अधिक प्रेम करते हैं, भगवान नहीं मानते, और यहाँ पर सभी भगवान मान करके उनसे जो प्रेम करते हैं, इसमें कुछ प्रेम की कमी है। तो कृष्ण कैसे मथुरा में रह जाएंगे और ब्रज में नहीं आएंगे, ऐसा आप और कृष्ण को जरूर वृंदावन में रहना, शास्त्रों में भी दिखा दिया है, वृंदावन परिचर्य गति, वृंदावन को छोड़ करके कृष्ण कभी भी एक पैर भी नहीं गए, और हम देखते हैं कि वो मथुरा में रह गए, और ऐसे हम रह गए कल परसों वर्षों तक नहीं आए। भागवत में उनके लौटने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, दूसरी तरह से है, जैसा भागवत का स्वभाव है, क्या स्वभाव, परोक्ष रूप में वर्णन करते हैं लीलाओं, प्रत्यक्ष रूप का वर्णन नहीं करते। गोपियां प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलती, परोक्ष रूप में मिलती है, कृष्ण भी परोक्ष रूप में मिलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, पति के रूप में नहीं मिलते, उपपति के रूप में मिलते हैं, बेटे के रूप में नहीं मिलते, उप बेटा परकीय बेटा के रूप में मिलते हैं। इस तरह से सभी इनका परोक्ष है, सुख जाए, विवाह किया सुख जाती, उनके पास में मथुरा नहीं मिली, कृष्ण ने उसे प्रेम किया, क्या कृष्ण ने प्रेम किया, किंतु प्रभु के रूप में प्रत्येक के रूप में इनको रुक्मिणी सत्ता ब्राह्मण के साथ विवाह करके वहां पर नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, चाहते तो कौन बाधा कर सकता था, नहीं, उसके अंदर में वैसा शुद्ध प्रेम नहीं था जैसा कि उन लोगों में था, जैसे वहां पर 16,000 जो महिषियां थी जो नरकासुर के घर में थी, उनका जैसा विशुद्ध प्रेम था, कृष्ण पर एकांतिक प्रेम हुआ, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो कोई मतलब नहीं, उनको ग्रहण करना, और इसका इसमें कुछ भोग की कामना थी, अपने भोग की लालसा हृदय उनका इनको ग्रहण नहीं किया, किंतु ग्रहण किया क्यों किया, कि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरों के प्रति उसी कोई भावना नहीं थी, संत इत्यादि राजा थे और भी राजकुमार थे, उसकी नजर कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं गई, कोई भोग की कामना भी है तो वो कृष्ण के साथ ही है, इसलिए काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, द्वेष से हो, भक्ति से हो, किसी प्रकार से भगवान के साथ में संपर्क होने से भगवान मिलेंगे, इसको मिले तो क्या को मिले, किंतु खुशी को मिले जैसे उनका प्रेम, इसी तरह से कृष्ण अपने किसी भी भक्त को चाहे वो जैसा भी हो, पूर्ण शरणागति हो, आधा शरणागति हो, चौथाई शरणागति हो, थोड़ा भी भगवान का भजन करता है, अधिक भगवान का भजन करता है, चाहे विश्व में कहीं भी हो, किसी को छोड़ेंगे, किसी न किसी रूप में सबको अपनाएंगे, वो बड़े उदार हैं, हम लोग की भक्ति शुद्ध नहीं है, बात ठीक है, किंतु जितने परिमाण में शुद्ध है उतने परिमाण में उनकी कृपा हमारे, और यदि अनन्य निष्ठा हो जाएगी तो वो कभी छोड़ेंगे, इसे द्वारका में तो अनन्य भक्त हैं, उद्धव इत्यादि अनन्य भक्त हैं, असुर भी अनन्य भक्त हैं, वहां की रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि अनन्य है, वो भक्त नहीं बल्कि ये परिकर हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो परिकर हैं जो इस जगत में साधक हैं, यहां तक कि अन्नाभिलाषिता भी नहीं है, अन्नाभिलाषिता भी है, कृष्ण का भजन करते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, कुछ भक्ति भी चाहते हैं, कुछ अर्थ भी चाहते हैं, तो कृष्ण क्या करेंगे, ध्रुव की भांति वो उनको दे देंगे, ऐश्वर्य धन संपत्ति राज्य सब कुछ दे देंगे, और फिर कृपा करके उनकी वासनाओं को शुद्ध करके अपने कर, किसी किसी को विचार करके मुक्ति इत्यादि नहीं देते, और किसी किसी को धन संपत्ति इत्यादि दे दिया, उसकी इच्छा पूर्ण कर दी, जैसे ध्रुव की इच्छा पूर्ण कर दी, और वो पछताने लगा, पछताते हुए क्या, जैसे हमने चिंतामणि को पाया और कांच में झूल रहा था, और फिर उसको प्रत्याग करके मैंने कांच ले लिया, कांच का टुकड़ा ये जगत, और उन्हें फिर उनकी बुद्धि हुई, नारद जी का पुनः संग हुआ, और वो कैसे समझे, फिर परम पद को प्राप्त कर दिया, यही हुआ कि उनको गोपियों का संग या ऐसे ऋषिकों का संग नहीं मिला, इसलिए ब्रज की स्थिति नहीं मिली, इसलिए कृष्ण को सभी के पास नहीं जाना पड़ेगा, द्रौपदी के आदमियों को जाना है कि नहीं जाना है, ब्रज में रहते हुए नहीं जा सकते थे, महाभारत का संग्राम करना था, पृथ्वी का भार हरण करना था, द्वारका में वृंदावन में रहेंगे तो ये काम सब नहीं होगा, इसलिए स्पष्ट रूप में नहीं रहते हुए भी परोक्ष रूप में इनको रहना है वृंदावन में, इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ लक्ष्मी ठाकुर जी ने बताया जो प्रेम के स्थान को छोड़ करके कृष्ण नहीं जा सकते, तो यहाँ पर दो बातें हुई, बात ये हुई जिसमें नंद बाबा चलने दो गाड़ियां तैयार हुई, जो माया ने दो रूप दिखलाया, एक ने दिखलाया नंद बाबा बड़े आनंद के साथ में कृष्ण और बलदेव को अपने बाएं दाहिने बैठा कर गाड़ी लेकर और वहां पर पहुंचे, और अपनी अप्रकट लीला में रहते हुए इनके साथ में अलक्षित रूप में परोक्ष रूप में रहने लगे, और सारी लीलाएं यथावत होने चलती गई, ब्रज को कभी नहीं छोड़ा, नहीं तो गोपियां मर जाती, यशोदा जी मर जाती, क्यों नहीं मरी? कभी स्वप्न में, कभी स्तुति में, कभी कुछ गोपियों के पास में आ जाते। अरे तुम लोग समझते कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ। यशोदा जी जैसे उनके गोपी में बैठ करके भोजन कर रहा है कृष्ण और बलदेव, उधर जैसे उन्होंने कहलाया, देखो मैया को कह देना कि मैं जिसमें जाता हूँ यशोदा जी जो कुछ खिलाती हैं मैं, और वो समझती हैं इस कुर्सी में भी स्वप्न देना। और गोपियों से कह देना मैं ब्रज में ही हूँ, उनके साथी में हूँ, मैं ब्रज छोड़ करके कभी नहीं गया, किंतु कुछ कारण ऐसे हैं जो अलक्षित रूप में मुझे रहना पड़ता है, परोक्ष रूप में रहना पड़ता है, इसलिए परोक्ष रूप में रह करके गोपियों के साथी में हूँ। इस तरह से कृष्ण यहाँ आकर के अलक्षित रूप में रहने लगे, और कभी कभी उनको साक्षात रूप में दर्शन देते, और कभी कभी राधा जी समान दृष्टि को गोदी में लिए हुए और कृष्ण इसको समझ रही है, और कृष्ण पीछे से आकर के आंख बंद करते। राधा जी सोचते हैं कि कृष्ण तो कहीं गए नहीं, यहीं पर तो हैं। कभी ललिता खुलो आंख, नहीं तो बीचा था, अरे बीचा का सुन रूप मंजरी नहीं, फिर उनका कोमल हाथ का जो सुगंध आया मैं समझ गई कि वही काला है। और कहते हैं हाथ करके मुस्कुरा करके जब आंख खोला तो देखा जी कोई नहीं, बस स्तुति में गिर गई। मैंने सोचा ये स्तुति मुझे हुई, किंतु स्तुति नहीं, कृष्ण स्वयं वहां पर वृंदावन प्रत्यक्ष पादे कम नगच्छति, यह एकदम संपूर्ण से किस लिए ऐसा किया? प्रणब भाव को जगत को बिछड़ाने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में कैसे तड़पती हैं और मैं कैसे उनके साथ में रहता हूं, इस चीज को बिछड़ाने के। और दूसरी बात, दूसरी जो गाड़ी थी उसमें देखा नंद बाबा रोते थे, तड़पते थे, सखाओं के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में बैलगाड़ी से रोते हुए आए, और यहां आकर के शाम को घर के पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश किया। उसमें गोद भी हो रही थी, शाम हो रही थी, किसी ने देखा नहीं, रोते हुए घर में प्रवेश किया। यशोदा जी ने जाना, समझ गई आके रे आ रहा है, और उनके सामने में वो कपड़े और पोटली रख दिया आभूषणों की, मेरे के साथ में दस दस करके रोने लग गई। ये कुछ भी नहीं सकी, ये कृष्ण को साथ में आया, कृष्ण को छोड़ दिया और दूषित होकर के नंद बाबा जी डर से, भय से, संकोच से, लज्जा से उनके सामने कितने दिनों तक नहीं आए, घर में रसोई नहीं बनी, पाकस्थली जो पाक गृह है रसोई घर वो लिपा पुता नहीं गया, किस लिए रसोई बने? बर्तन औंधे रख कर रह गए, कोई मांजने वाला कोई मांजे नहीं, सुर्ख और मकड़ों ने जाल खोल दिया, गाय में दूध देना छोड़ दिया, कृष्ण के बिना वो चरने नहीं जाएंगे, बछड़े रोने लगे, कोयल ने कुहकना बंद कर दिया, मोरों ने नृत्य करना छोड़ दिया, सारा ब्रज एकदम अंधकार हो गया, बछड़े दुबले पतले हो गए, मरने लग गए, गायें भी ऐसे ही मरने लग गई, सारी स्थिति एकदम बदल गई। ये कैसा हुआ? ये बाह्य रूप में, और परोक्ष रूप में हुआ क्या? कृष्ण वहां पर ले जाकर रहे, ये देख रहे हैं कि हमारे गृह में कैसे ये कर रहे हैं, जगत में ऐसा कभी नहीं। दशरथ मर गए, हाराम हाराम हाराम, सुख नहीं कर सके, किंतु नंद बाबा यशोदा मैया और गोपियां को मरे नहीं जान बूझ करके कष्ट सहना अच्छा है। एक आदमी भड़कती हुई आग में, जैसे राजस्थान की महिलाएं
सतीदाह प्रथा,
सतीदाह नहीं
जौहर
प्रथा, जौहर प्रथा में हजारों एक साथ में पिता जलाकर उसमें कुछ करी, और एक तरफ है धान की भूसी रख दो, इकट्ठा कर धान की भूसी जानते हैं, और उसमें आग लगा दो, वो आग भटकती नहीं, धीमे धीमे आँच चलाती है, और एक आदमी को उस पर लेटा दो उस आग पर, दस बारह दिन लग जाएगा मरने में, तड़प तड़प करके वो मरेगा। ये दोनों में कौन मरना अच्छा है? तड़प तड़प करके मरना चाहे ना, एक ही बार में मर जाए। रेल में कटते हैं लोग किस लिए? एक क्षण में कभी कष्ट होता है। ये शंकराचार्य जी का कुछ अपमान किया, उनको शास्त्र में हराया। कोई एक थे जो कि जैन जैन नहीं बौद्ध, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े, क्या नाम था?
कुमारी भट्ट।
कुमारी भट्ट शंकराचार्य को परास्त किया। शंकराचार्य उनके सामने टिक नहीं सके। इन्होंने बौद्धों को भाग से विचारित किया, इनके विचारों को, जो भगवान शून्य नहीं है, जगत शून्य नहीं है, जगत भगवान के द्वारा प्रकटित है, भगवान की भक्ति ही सर्वप्रिय है श्रेष्ठ है। इस चीज को प्रमाणित करने के लिए शंकराचार्य को परास्त किया। किंतु बौद्धों को परास्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में गए, पटना के पास में नालंदा, और वहां रह करके आठ दस वर्ष तक उनके सारी विद्याओं तर्कों युक्तियों को पढ़ा। वेद के प्रशंसक थे, वेद के समस्त सिद्धांतों को जानते थे, उनका सिद्धांत जान करके अब उनका खंडन करेंगे, इसलिए पढ़ने गए।